प्रिय मित्रों नमस्कार। आज 6 फरवरी 2018 है और आज के इस afis.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों मुझे याद आ रहा है कि फ्राइडे को यानी कि शुक्रवार को मैंने आप सबसे जो परिवार में हमारी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं के साथ हम कैसे क्या किस तरह का व्यवहार करें इस तरह के इश्यू पर कुछ बातें की थी और फिर अचानक मुझे लगा कि नहीं उस मतलब यूं कह लीजिए कि मेरा मन नहीं भरा और ऐसा महसूस हुआ कि उस पर कुछ बातें और की जानी चाहिए। तो मित्रों आप सबकी मौन और अप्रत्यक्ष स्वीकृति मानते हुए मैं आज अपने इस एपिसोड में फ्राइडे वाले विषय को ही कंटिन्यू करने जा रहा हूं और मुझे लगता है कि जरूर इस विषय को आप लोगों का उतना ही प्यार मिलेगा जितना कि फ्राइडे वाले विषय को मिला था। मित्रों देखिए समस्याएं चलिए चाहे वो परिवार की हो चाहे हमारे ऑफिस की हो हमारी व्यक्तिगत हो हमारे अपने हस्बैंड वाइफ की हो बच्चों के साथ हो किसी भी तरह की समस्याएं हो मुझे ऐसा लगता है कि समस्याएं जब हमारे सामने आती हैं तो हमारा जो व्यवहार होता है उन समस्याओं के प्रति जो हमारा इंटरेक्शन होता है उसके तीन रूप अक्सर दिखाई देते हैं। तीन रूप, पहला तो यह होता है, मैं एक निगेटिव सेंस में यह बात कह रहा हूं, पहला तो यह होता है कि हम अपनी नासमझी के कारण अपने ईगो के कारण या यूं कह लीजिए कि अपनी बेवकूफी के कारण उस समस्या को और अधिक बढ़ा देते हैं। देखिए मैंने यहां दो अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है, ना समझी और बेकूफी, मूर्खता आप कह सकते हैं, ये दोनों एक नहीं है। कभी कभी लगता है ना कि भाई जो ना समझ होगा वो तो मूर्ख ही होगा, ऐसा नहीं होता है। देखिए ना समझ वह होता है जिसे उसके बारे में कोई जानकारी है नहीं, वो बेचारा जानता ही नहीं है लेकिन आपने उसको काम सौंप दिया। जैसे मान लीजिए कि मैं मोटर मैकेनिक नहीं हूं लेकिन आपने मुझे मोटर ठीक करने का काम दे दिया है तो मेरी तो ना समझी है तो मैं तो उसे गड़बड़ी गड़बड़ करूंगा। तो जब मैं गड़बड़ करूंगा तो आपका रवैया मेरे प्रति क्या होगा कि भाई ये ना समझ है छोड़ो यार ये नहीं जानता है। लेकिन अगर मैं मैकेनिक हूं लेकिन मैं मूर्ख मैकेनिक हूं और आपने मुझे गाड़ी सौंप दी और मैंने उसे खराब कर दिया तो अब आप क्या कहेंगे। तो इसीलिए इन दोनों में फर्क है कि हम अपनी मूर्खता अपनी बेवकूफी के कारण या तो हम उस समस्या को बढ़ा देते हैं और इंक्रीज कर देते हैं। आप देखेंगे कि जब दो लोगों में बहस होती है ना उस बहस का कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं होता है। इसीलिए अक्सर कहा जाता है तिल का ताड़ बना देना कि एकदम छोटी सी चीज थी एकदम छोटी सी बात थी और बात को बढ़ाते 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 इतना बड़ा बना दिया गया है जैसे कि वो ताड़ हो गया हो यानी कि कुछ भी नहीं था और इतना बड़ा बना दिया गया जिसको हम लोगों ने चौथी पांचवी के हिंदी लिटरेचर की हिंदी की किताब में लिटरेचर तो उस समय नहीं होता था उस तरीके से हिंदी की किताब में एक कहानी पढ़ी थी कि सूत न कपास और जुलाहों में लट्ठम लट्ठा, न तो वहां सूत है और न कपास है लेकिन दो जुलाहे हैं वो आपस में भिड़ गए हैं बिना मतलब के लड़ाई कर रहे हैं जबकि रीजन कुछ भी नहीं है। ज्यादातर मामलों में हम सबसे यही गलती होती है या हम कह लीजिए कि अनजाने में ही हम ये चूक कर बैठते हैं। इश्यू कुछ भी नहीं था लेकिन हमने उस इश्यू पर बहस करनी शुरू की और बहस करते करते शुरू हमने कहां से किया था और पता नहीं कहां पहुंच गए ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में जब आप जाएंगे तो वहां जो आपस में झगड़े होते हैं तो आप देखिए कि झगड़ों में बहुत जल्दी माता पिता को ले आते हैं बहुत जल्दी ले आएंगे झगड़ों में और जैसे ही माता पिता को लाया गया मतलब माता पिता के प्रति कोई भी एक पक्ष अपमानजनक शब्द कह देगा कुछ भी या खानदान के प्रति अपमानजनक शब्द कह देगा और जैसे ही सामने वाला इसको सुनता है वो तो भड़क जाता है। पहले से ही चिंगारी लगी हुई थी अब उसने उस पर पेट्रोल उड़ेल दिया अब वो भम भम भग भग भगा करके आग की ज्वाला भड़कने लगी। अब ये उसके माता पिता या खानदान के बारे में कुछ कहेगा और बस इसके बाद तो चीज क्या थी समस्या क्या थी वो गायब हो चुकी होगी और पता नहीं चीजें कहां से कहां पहुंच गई और उस स्तर पर आ गई कि अब वो सुलझ नहीं सकती क्योंकि प्रारंभिक स्तर पर अगर ध्यान दे दिया जाता तब तो बहुत ही सामान्य सी चीज थी अब तो वो जटिल होती चली गई ना क्योंकि आपने कुछ कहा वो उसमें ऐड ऑन हो गया, दूसरे ने कुछ कहा वो उसमें ऐड ऑन हो गया। तो पहले एक थी समस्या और उसके आगे दोनों ने मिलकर के अपनी अपनी तरफ से एक एक शून्य और लगा दिए, वो 100 बन गई। अब 100 को सुलझाइए, अरे भैया एक ही सुलझना मुश्किल हो रहा था, अब ये 100 कहां से सुलझेंगे, तुमने ये कहा था, तुमने ये कहा। अब बात इस पर नहीं हो रही है कि समस्या क्या थी, बात इस पर हो रही कि तुमने ऐसा क्यों कहा। अब वो फालतू की लिस्ट बन गई। इसे मैं कहता हूं कि समस्याओं को बढ़ा देना, हम ज्यादातर यही करते हैं, यही करते हैं। इस पर ध्यान दीजिए और अपने अपने हम सब व्यवहार पर ध्यान दें कि जब हमारे सामने कोई समस्या आती है, देखिए अभी तो मैंने झगड़े की बात कही है, यह भी एक समस्या ही है कि उस समस्या के समाधान के लिए हमने झगड़े का रास्ता अपना लिया है, और दूसरे रास्ते होते हैं। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम उसे कम से कम बढ़ाएं तो नहीं, लगातार कोशिश होनी चाहिए कि हम उसे वहीं तक सीमित रखें। उस ज्यादा आदर्श स्थिति यह है कि हम उसे घटाएं, कोशिश करें कि हम उसे कम करें। घटाने की प्रोसेस क्या होती है, देखिए घटती अपने आप नहीं है। एक तीसरा तरीका भी होता है जिसे आप कह लीजिए तटस्थता, कि हमने एक तटस्थता का भाव रख लिया है कि भैया न ऊधो का लेना न माधो का देना, ठीक है समस्या है और इस समस्या अपने आप सुलझ जाएगी, अपने आप इसका निपटारा हो जाएगी। जिसके लिए हमारे यहां शब्द प्रयोग किया गया है कि जो समय है, जो टाइम है, वो सबसे बड़ा इलाज है, सबसे बड़ा जो हीलिंग करता है वो समय करता है, समय आएगा वो चीज खत्म हो जाएगी। हम ये अप्रोच लेकर के चलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये अप्रोच सही नहीं है। समय कुछ चीजों का तो इलाज कर देती है, लेकिन अगर हम अपनी समस्या को पूरी तरह से समय पर ही छोड़ देते हैं तो ज्यादातर मामलों में यह देखा गया है कि वो घाव बढ़ता चला जाता है, वो नासूर में तब्दील हो जाता है, और एक समय ऐसा आता है जब वो बिल्कुल लाइलाज हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी खराब हो गई, भैया गाड़ी खराब हो गई तो अभी तो बहुत थोड़ी सी खराबी आई है, गाड़ी चल भी रही है, आप अभी चलाते हुए गाड़ी को किसी मैकेनिक के पास ले जाइए, वो उसे ठीक ठाक कर देगा, पैसे भी कम लगेंगे और आपके काम का हर्जा भी नहीं होगा। जब वो बहुत खराब हो जाएगी पैसे भी ज्यादा लगेंगे, अब मैकेनिक भी ज्यादा समय लेगा तो आपके काम का हर्जा भी हो रहा है, अब आप गाड़ी चला करके नहीं ले जा सकते, या जब गाड़ी आप कहीं चला रहे थे तो पता लगा वो रास्ते में रुक गई है। तो आप देखिए ना कि हमने उसको समय पर छोड़ दिया, लेकिन क्या वो समय कोई मैकेनिक है जो उसको ठीक कर देगा। मुझे लगता है कि जो तटस्थता का सिद्धांत है वो बहुत ज्यादा सही नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तटस्थता का सिद्धांत अपनाते हैं, जो भाग्यवादी हैं वो, कि भैया ठीक है सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा यार, छोड़ो चलो क्या इसकी चिंता करनी, ये हम अक्सर करने लगते हैं। तो दोस्तों वहां बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाती है, एक बहुत बड़ी समस्या वहां खड़ी हो जाती है, वो चीजें फिर यूं कह लीजिए कि खत्म नहीं होती बल्कि कहीं ना कहीं वह अपने आप बढ़ने ही लगती है। इसके लिए जो सबसे अच्छा जो अप्रोच मुझे लगता है मित्रों, वह है कि हम किस तरीके से जो समस्या हमारे सामने आई हुई है इसे घटा रहे हैं। अब आप देखिए कि आपको यह काम आसान नहीं लगेगा, सामान्य रूप से आप सोचेंगे तो लगेगा कि यार कैसे घटाया जा सकता है। मुझे लगता है कि सबसे आसान तरीका तो यही है कि आप उसे बढ़ने मत दीजिए। अगर आप बढ़ने नहीं दे रहे हैं तो अप्रत्यक्ष रूप से आप ये मान करके चलें कि आप घटाने का ही काम कर रहे हैं, लेकिन तटस्थ रह करके नहीं। जो इसीलिए मैंने तटस्थता को जो तीसरा बिंदु था उसको मैंने पहले ले लिया कि मैं पहले तटस्थता को आपको समझा दूं, क्योंकि अगर आप तटस्थ रहेंगे तो मानकर चलिए कि आप फिर उसे बढ़ने के लिए अलाउ कर रहे हैं। जैसे कि अगर बाढ़ का पानी शहर के अंदर घुस रहा है और घुस गया और आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो घर में घुसेगा ही घुसेगा, एक्शन नहीं ले रहे तो तटस्थता तो मुझे पता नहीं क्यों स्वीकार्य नहीं हो पाती है। लेकिन हाँ, अगर कुछ मामले ऐसे हैं जिनसे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है या जिनके बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की गुंजाइश भी नहीं दिखाई देती है, संभावना आशंका नहीं है, तो आप कह सकते हैं यार कि छोड़ो चलो इसको बने रहने दो। जैसे मान लीजिए कि आपके गाल पर एक मस्सा हो गया है, अब ठीक है यार ये मस्सा है तो है, कोई ज्यादा फर्क तो पड़ता नहीं है, कोई बीमारी भी नहीं है, डॉक्टर भी कह दिया है, डॉक्टर ने कि ये बढ़ेगा नहीं तो पड़े रहने दो। तो यहां तो आप तटस्थता का सिद्धांत अपना सकते हैं, लेकिन अगर कोई अंदरूनी बीमारी हो गई है तो फिर वहां तटस्थता का सिद्धांत काम नहीं करता है। आपने टीवी पर एक देखा होगा एड आता है बड़ा अच्छा कि आपकी गाड़ी को ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, और फिर वो गाड़ी का मालिक कहता है कि बताओ गाड़ी को भी कभी ट्यूबरकुलोसिस होता है क्या, वो अमिताभ बच्चन का एड है, देखिएगा बड़ा खूबसूरत है। तो बताया कि आपको जो खांसी हुई है ना, जो आप खांस रहे हैं, ये उसी के लक्षण हैं। तो इसको अगर आप अवॉइड करेंगे तो वो ट्यूबरकुलोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो चीज समस्याओं के बारे में भी होती है। तो पहले तो आप तटस्थता के सिद्धांत को त्यागिए, अपवाद स्वरूप बात अलग है, हस्तक्षेप कीजिए, और हस्तक्षेप करते हुए ध्यान रखिए कि आपको अपना संतुलन बना करके रखना है, एक जबरदस्त संतुलन की स्थिति में आपको रहना है। संतुलन की स्थिति में कि दिमाग में आप एक थॉट ले आइए, एक थॉट ले आइए, और ये थॉट बहुत जबरदस्त रूप से मित्रों काम करता है, सच में बता रहा हूं कि ये जादू है बिल्कुल। थॉट ये ले आइए कि अगर बहस की स्थिति आ रही है सुलझाने के लिए, आमने सामने आप बैठे हुए हैं, तो थॉट ले आइए दो तीन चीजें। पहली बात तो यह है कि मैं जोर से नहीं बोलूंगा, मेरी आवाज ऊंची नहीं होगी, यानी कि मैं गुस्से से नहीं बोलूंगा। अगर सामने वाला गुस्सा दिखाएगा भी ना, तो मैं अपने आप को कंट्रोल में रखूंगा। देखिएगा आप सामने वाला कुछ समय के बाद पराजित हो जाएगा, उसको आश्चर्य होगा कि यार इस आदमी को तो गुस्से ही नहीं आ रहा है, आप जीत जाएंगे। दूसरी बात जो आपको अपने दिमाग में लानी चाहिए वो ये है कि मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करूंगा, नहीं कहूंगा जो सामने वाले की गरिमा को ठेस पहुंचाती हो, उसके डिग्निटी के खिलाफ, बिल्कुल भी नहीं, चाहे वो उसको डिजर्व ही क्यों ना करता हो, लेकिन बोलिए मत, क्योंकि कोई भी सुनना पसंद नहीं करता। मुझे लगता है कि डिग्निटी पर कभी उंगली भी नहीं उठानी चाहिए। हम जो कुछ भी हो, हम मूर्ख हो सकते हैं, हम गरीब हो सकते हैं, हम बेवकूफ हो सकते हैं, हम अपराधी हो सकते हैं, कुछ भी हम हो सकते हैं, लेकिन अंततः हैं तो हम मनुष्य ही। मित्रों, यहां जो मैं गरीब की मैंने जो बात कही है वो इसलिए कि धनी लोगों के लिए ये भी एक थोड़ा सा एक शिकायती लहजा हो जाता है ना, कि तुम्हारे पास क्या है यार, तुम इतना ताव दिखा रहे, बोल देते हैं ना, इसलिए मैंने उस शब्द का इस्तेमाल किया है। तो मित्रों, ये आपका सेकंड थॉट हो गया। अब तीसरा थॉट आप ये लेकर के आइए कि जो अगर सामने वाला कुछ कह रहा है तो मैं आउटराइट उसको रिजेक्ट ना करूं, यानी कि बातचीत के दौरान हमको बीच का रास्ता लेकर चलना है, मिडिल पाथ, गौतम बुद्ध का सिद्धांत। यानी कि ठीक है, जैसे बातचीत हो रही है कि अच्छा ठीक है भैया, तुम ये बात कह रहे हो ना, ठीक है, इस पर सोचते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसको इस तरीके से भी तो किया जा सकता है, जरा इस नजरिए से सोचा जाए तो देखो शायद बात बन जाए, या ये भी उपाय हो सकता है, इस पर भी हम लोगों को विचार करना चाहिए। तो उसकी बात को एकदम मत काटिए जो मैं कहना चाह रहा हूं, क्योंकि एकदम आप काट देंगे तो तिलमिला जाएगा, फिर कहेगा कि इससे तो समझौते की कोई गुंजाइश ही नहीं है। काटिए मत, आप उसकी बात को सुनिए, लेकिन गलत बात है तो स्वीकार भी मत कीजिए, क्योंकि अगर आपने यहां कमिट कर दिया तो फिर पता लगा कि वो तो पकड़ लेगा कि भैया तुमने तो कहा था, फिर तो मामला गड़बड़ हो गया ना। अगर उसकी बात सही है तो स्वीकार भी कर लीजिए, लेकिन अगर सही नहीं है तो काटिए मत और उसे स्वीकार भी मत कीजिए, मध्यम मार्ग अपनाइए। ठीक है, चलो तुमने ये बात रखी है, अपन इस बात पर भी विचार करते हैं। तो आप देखेंगे कि केवल ये तीन विचारों के माध्यम से आप बढ़ती हुई समस्या को एक तो वहीं रोक देंगे और धीरे 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 वो घटती चली जाएगी। मित्रों, आप करके देखिए, आजमा करके देखिए, आपको बड़े चमत्कारिक परिणाम इसके मिलेंगे, मैं आपको एश्योर कर सकता हूं। तो दोस्तों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही, अब आप सबकी अनुमति चाहूंगा। नमस्कार।